ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष पद पर केपी शर्मा ओली विजयी। बीते भाद्र 23 और 24 गते की घटना संबंध में जांचबूझ करने के लिए गठित आयोग की अवधि एक महीना अतिरिक्त करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को बैंक जमानत पर रिहा करने का उच्च अदालत बुटवल इजलास का आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव कल प्रदेश सभा से लेंगे विश्वास मत। और अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर हथियार बेचने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले के अध्यक्ष पद पर केपी शर्मा ओली विजयी हुए हैं। 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन से ओली 1663 मतों के साथ विजयी हुए हैं। अध्यक्ष ओली के प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेल ने 564 मत प्राप्त किए। इसी प्रकार महासचिव पद पर शंकर पोखरेल 1228 मत लाकर विजयी हुए हैं। उनके प्रतिस्पर्धी सुरेन्द्र पांडे ने 999 मत प्राप्त किए। उपाध्यक्ष पदों पर विष्णु पौड़ेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, राम बहादुर थापा बादल, गोकर्ण विष्ट और रघुजी पंत विजयी हुए हैं। नेकपा एमाले के 5 उपाध्यक्ष पदों के लिए 11 लोगों ने उम्मीदवारी दाखिल की थी। इसी प्रकार उप महासचिव पद पर योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ और लेखराज भट्ट विजयी हुए हैं। इसी प्रकार सचिव पदों पर पद्मा अर्याल, महेश बस्नेत, शेरधन राय, खगराज अधिकारी, हिकमत कार्की, यामलाल कड़ेल, भानुभक्त ढकाल, छविलाल विश्वकर्मा और रवि राजन भट्टराई विजयी हुए हैं। 9 सचिव पदों के लिए सबसे अधिक 20 लोगों ने उम्मीदवारी दाखिल की थी। नेकपा एमाले के नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि अब प्रतिनिधि सभा की पुनर्स्थापना के लिए देशव्यापी आंदोलन और अदालत में कानूनी लड़ाई साथ साथ चलाई जाएगी। अध्यक्ष ओली ने यह भी कहा कि असंवैधानिक तरीके से देश में आगजनी और लूटपाट कराकर किया गया संसद का विघटन और सरकार का गठन स्वीकार नहीं है। अध्यक्ष ओली ने भाद्र 24 की घटना के बाद देश में पुरानी पार्टियां समाप्त हो गई हैं ऐसी बातों को खारिज करते हुए कहा कि नेकपा एमाले और भी शक्तिशाली होकर आगे बढ़ेगी। अध्यक्ष ओली ने यह भी दावा किया कि पार्टी में सभी को एकजुट कर और अधिक बल के साथ आगे बढ़ा जाएगा। नेकपा एमाले के महाधिवेशन से निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित पदाधिकारियों ने आज ही शपथ ली है। एमाले के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष डॉ विजय सुब्बा के समक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओली ने शपथ ली, जबकि अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को अध्यक्ष ओली ने शपथ दिलाई। इसी बीच नेकपा एमाले के नवनिर्वाचित केंद्रीय कमेटी की पहली बैठक कल के लिए बुलाई गई है। एमाले नवनिर्वाचित सचिव डॉ राजन भट्टराई से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कमेटी की पहली बैठक कल दोपहर 1 बजे बबर महल स्थित कार्की बैंकेट में बुलाई गई है। सरकार ने भाद्र 23 और 24 की घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग की कार्य अवधि 1 महीने बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बयान दर्ज करने सहित रिपोर्ट के काम पूरा न होने के कारण आयोग की अवधि 1 महीने बढ़ाने का निर्णय किया गया है। यह जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने दी। साथ ही संचार मंत्री खरेल ने बताया कि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहला संशोधन अध्यादेश 2082 जारी करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश करने का निर्णय किया गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को बुटवल स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास द्वारा बैंक जमानत स्वीकार कर रिहा करने का आदेश दिया गया है। बुटवल स्थित सुप्रीम सहकारी की रकम ठगी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में रहे लामिछाने के लिए 2,74,84,000 रूपये की बैंक गारंटी स्वीकार करते हुए आज रिहाई का आदेश दिया गया। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास के न्यायाधीश वासु देव आचार्य और तेज नारायण पौड़ेल की पीठ ने यह आदेश दिया कि अदालत का अंतिम फैसला होने तक उक्त शर्तों पर प्रतिवादी रवि लामिछाने को सुप्रीम सहकारी रकम ठगी मामले की सुनवाई से जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत के सूचना अधिकारी राम बहादुर कुंवर ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव कल प्रदेश सभा से विश्वास मत लेंगे। प्रदेश सभा की कल शाम 4 बजे होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री यादव विश्वास मत लेंगे। मुख्यमंत्री यादव गत मार्गशीर्ष 19 को नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता के रूप में 7 दलों के 77 प्रदेश सभा सदस्यों के समर्थन से मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा है कि नेपाल एक चीन नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। काठमांडू में आज आयोजित 4th संयुक्त चाइना नेपाल मीडिया सम्मेलन में मंत्री खरेल ने कहा कि नेपाल और चीन लंबे समय से अच्छे पड़ोसी रहे हैं और उन्होंने नेपाल के विकास एवं सद्भाव के लिए चीनी सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री राजेन्द्र सिंह भंडारी ने कहा कि वैदेशिक रोजगारी के नाम पर ठगने वालों को नहीं भागने के लिए केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB टोली सहित के विशेष संयंत्र निर्माण का तैयारी किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन दिवस के अवसर पर मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भंडारी ने पत्र भेजकर बेटी बेच विखन अपराध महाशाखा लगायत सभी टोली को सक्रिय बनाकर विशेष संयंत्र तैयार किया जा रहा है। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री कुलमान घिसिंग ने कहा कि बर्दिया में जब्दी में पुल निर्माण प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। आज बर्दिया में जब्दी घाट पुल के अनुमान के दौरान उन्होंने कहा कि पुराना पुल प्राविधिक समस्या के कारण कानूनी झमेला में होने से नए पुल के निर्माण का प्रक्रिया शुरू किया गया है। पुलिस ने झूठा विवरण पेश करके नागरिकता, राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा राहदानी बनाने के कार्य में संलग्न 3 लोगों को गिरफ्तार करके सार्वजनिक किया है। गिरफ्तार होने वालों में दांग तुलसीपुर उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 17 के अभी काठमांडू तारकेश्वर वार्ड नंबर 8 शांति टोल में रह रहे 43 वर्षीय यम बहादुर बसनेत, झापा की कंचनबल गांव पालिका 3 के 51 वर्षीय कृष्ण बहादुर कटवाल और झापा की भद्रपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के 41 वर्षीय सूर्य बहादुर खड़का शामिल है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम के लिए नागरिक शिक्षा प्रवर्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक किया है। निर्वाचन शिक्षा तथा पुस्तिका के विस्तार स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के पूर्वाधार के नारे के सहित सामाजिक शिक्षकों के लिए निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका 2082 तैयार करके आयोग ने वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपाल ने स्थानीय, प्रदेश और संघीय तहों में स्वतंत्र उम्मीदवारी देने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करने के लिए स्वतंत्र जनप्रतिनिधि समन्वय कार्यदल गठित किया है। पार्टी सचिवालय के बैठक से विष्णु कुमार श्रेष्ठ के संयोजकत्व में कार्यदल गठन करने का निर्णय हुआ है। ये जानकारी प्रवक्ता मनीष झा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के साथ करीब 11 अरब डॉलर के बड़े हथियार सौदे का ऐलान किया है। इसमें एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड और कई तरह की मिसाइलें शामिल है। हालांकि अभी इस सौदे को अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद ताइवान के साथ यह दूसरा हथियार सौदा करेंगे। चीन ताइवान की समुद्री और हवाई सीमाओं में नियमित घुसपैठ करता रहा है। इसके मद्देनजर यह सौदा काफी अहम माना जा रहा है। चीन ताइवान को विद्रोही प्रांत मानता है और उसका कहना है कि एक दिन इसका चीन के साथ विलय होगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह सौदा ताइवान को तेजी से मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करेगा। चीन ने इस ऐलान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पहले ऐसे ही एक सौदे को चीन ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा एमाले के अध्यक्ष पद पर केपी शर्मा ओली विजयी। बीते भाद्र 23 और 24 गते की घटना संबंध में जांच बूझ करने के लिए गठित आयोग की अवधि एक महीना अतिरिक्त बढ़ाने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को बैंक जमानत पर रिहा करने का उच्च अदालत बुटवल इजलास का आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव कल प्रदेश सभा से लेंगे विश्वास मत। और अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने का किया ऐलान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।